بالظبط. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو آج ہم امور خانداری میں حسن انتظام کے جو سیریز آف لیکچرز ہیں ہمارے حضرت پیر الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں ہم کھانے کا انتظام یعنی فوڈ مینجمنٹ والا بیان پڑھنا شروع کر رہے ہیں. پچھلی کلاس میں سلیپ مینجمنٹ، سونے کا انتظام والا بیان مفصل پڑھ کر کے اس کے اوپر بہت تفصیلی بات چیت کر کے، جس سے یقیناً آپ لوگ کافی بور ہو گئے ہوں گے، تو اب وہ کر کے جب مکمل کیا تو پھر اگلا بیان تلاش کیا کہ بھئی اب کون سا ہونا چاہیے، تو فوڈ مینجمنٹ کے اوپر نظر پڑی. اور اس میں کچھ حضرت نے بات بھی ایسی لکھی ہے کہ آپ کی امید ہے کہ بوریت دور ہوگی اس سے. تو آج فوڈ مینجمنٹ کا بیان شروع کر رہے ہیں. اس میں حضرت نے جو خطبے میں آیت نقل فرمائی ہے قرآن مجید کی، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، تو اس کا پہلے تو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں نا، کیونکہ خطبہ بھی تو سمجھ میں آئے کہ حضرت نے یہ والی آیت اس کے اندر رکھی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے. تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کے آنے والا واقعہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے فرشتے انسانی شکل میں، مطلب تفصیلاً ہے کہ بیان ہے کہ جو فرشتے آئے تھے نا، تو وہ باقاعدہ دو انسانوں کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، بالبشرہ، خوشخبری لے کر کے. کون سی خوشخبری؟ کہ ان کے پاس بیٹا پیدا ہوگا، جو کہ اب تک ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بے اولاد تھے. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام تو پیدا ہو چکے تھے، لیکن وہ اما ہاجرہ کے پاس پیدا ہوئے تھے. تو یہ اما سارہ کے پاس جو ہیں، یعنی ان کی جو اصل پہلی بیوی تھی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو ان کی خوشخبری لے کر کے یہ فرشتے آئے تھے. قال سلام، تو انہوں نے سلام کہا. فما لبثا ان جاء بعجل حنیذ، ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا، یعنی ان دونوں نے پہلے سلام کہا، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کہا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیر نہیں گزری تھی کہ وہ ان کی مہمانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے کر کے آ گئے، یعنی ایک گائے کا جو بچہ ہوتا ہے جس کو بچھڑا کہا جاتا ہے، تو اس کو ذبح بھی کیا، اس کو جو ہے وہ بھونا بھی، اور فوراً لے کر کے آ گئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر باقی ہے، باقی اپنا میں آگے چلتا ہے. تو بس ہم اب جو ہے وہ یہ بیان شروع کرتے ہیں. عورتوں کے لیے دلچسپ عنوان، یہ پہلا عنوان، پہلی ہیڈنگ اس کی رکھی کتاب مرتب کرنے والوں نے، ورنہ حضرت نے تو بیان کے اندر باقاعدہ ہیڈنگز دے کر کے بات نہیں کرتے، بس بیان چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب اس کو بک کی فارم میں کمپائل کیا جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر سب ہیڈنگز لگا دی جاتی ہیں. تو اس میں سب ہیڈنگ کیا لگائی؟ عورتوں کے لیے دلچسپ عنوان. فرماتے ہیں کہ آج کی گفتگو کا عنوان ہے فوڈ مینجمنٹ، کھانے کا انتظام. بہت عرصہ پہلے ایک مرتبہ ہیمبرگ سے موزمبیق جاتے ہوئے وائٹ روڈ جانا ہو، ٹھیک ہے، اب یہ کتابت کی غلطی ہے، بیان بھی ویب سائٹ کے اوپر، حضرت کی جو ویب سائٹ ہے tasawwuf.co، تو اس کے اوپر اصل بیانات بھی موجود ہیں، تو ان کو بھی آپ دوبارہ سن سکتی ہیں، یا جس وہاں پہ بلکہ موجود بھی تھا جب یہ سلسلہ بیانات ہو رہے تھے. हजरत ने यहाँ पे हैमबर्ग असल में नहीं फरमाया था, जो कि जर्मनी का एक शहर है, ये हैमबर्ग नहीं फरमाया था बल्कि जोबर्ग फरमाया था। जोबर्ग, जोबर्ग जो है ना, ये जोहानिसबर्ग का शॉर्ट फॉर्म है। जोहानिसबर्ग बोलना जरा लंबा हो जाता है, तो उसको क्या है ना, वो अक्सर ये अफ्रीका में रहने वाले लोग वो जोबर्ग बोलते हैं। तो हजरत का भी उनके साथ बहुत उठना बैठना और अरसे तक था, तो हजरत ने भी जोबर्ग कहना शुरू कर दिया था। तो ये साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसका कैपिटल सिटी है जोहानिसबर्ग। तो वहां से ना हजरत जा रहे थे मोजम्बिया, जो कि उसके नॉर्थ में है, एक मुल्क है पूरा, जैसे जैम्बिया है उसी तरह से मलावी है, उसी तरह मोजम्बिक भी एक कंट्री है। तो वहां जा रहे थे तो रास्ते में फरमाया कि व्हाइट रिवर, अब ये कोई अपेरेंटली कोई सफारी होगा, ठीक है, जहां पे जानवर होते हैं खुले हुए और इंसान होते हैं बंद। जू में क्या होता है कि जानवर होते हैं बंद और इंसान खुले हुए उनके पिंजरों के दरमियान चल रहे होते हैं, जबकि सफारी में उल्टा होता है। इंसान बंद कैसे होते हैं, वो किसी गाड़ी के अंदर बंद हो या किसी बस के अंदर बंद होते हैं, तो वो बस जो है ना फिर वो सफारी के अंदर जा रही होती है और वहां पे खुले जानवर होते हैं उनको देख रहे होते हैं। तो अपेरेंटली ये व्हाइट रिवर जो है वो कोई सफारी था। तो वहां पे जब गए तो वहां के मेजबान ने, यानी जो टूर गाइड होता है, तो उस वो हमें जंगल में ले गए। मतलब जो मेजबान थे उस शहर के, तो वो फिर सफारी ले गए, और सफारी में अपने टूर गाइड होता है हर सफारी का, तो उस जगह पर एक शेर को देखा। तो गाइड ने हमें बताया कि शिकार शेरनियां करती हैं, मगर पहले शेर खाना खाता है, इसके बाद शेरनियां खाना खाती हैं। क्या तो शिकार जो है ना वो शेरनियां करती हैं, यानी जो जो फीमेल जो लायनेस होती है वो हंटिंग करती है। अगरचे के लायन भी हंट कर सकता है, ऐसे नहीं कि वो कर नहीं सकता, लेकिन वो अमूमी तौर पर करता नहीं, ठीक है। अब ये क्यों नहीं करता, या तो लायन से जाकर के पूछें या लायन को बनाने वाले से जाके पूछें, ठीक है, ये कोई देसी कल्चर का तो लायन नहीं होता कि वहां पर जो है वो मर्दों को देख करके उसकी आदत भी खराब हो गई है कि वो काम नहीं करता, ठीक है। तो ये तो लायन है, और वो भी अफ्रीका में रहने वाला लायन, तो वो अल्लाह ने बनाया उसको इस तरीके से, तो वो नहीं करता। वो करता क्या है, लायन जो है ना वो, जो कि फिर ये नेशनल ज्योग्राफिक और इस किस्म के जो रिसर्चर्स हैं, तो ये इनके पास कोई काम काज तो होता नहीं है, इन्होंने कौन सा बीवी के हकूक अदा करने होते हैं, कौन सा शौहर के हकूक अदा करने होते हैं, कौन सा अल्लाह से रसूल के हकूक अदा करने होते हैं। तो अब ये जो है ना, अल्लाह ने इनको इस काम पे लगाया हुआ है, ठीक है ना। अब जाहिर है अल्लाह का दीन पर ईमान लाते नहीं है, तो अल्लाह ने इनको फिर इस काम पे लगा दिया कि जाओ जा करके जंगलों में जाओ, वहां जा करके शेरों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो कोई जंगल में गया हुआ होता है, कोई जो है वो पहाड़ की चोटी पे गया होता है, कोई जो है वो नॉर्थ पोल पे गया होता है, कोई साउथ पोल पे चला जाता है, वो वहां पे जा करके काम कर रहे हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह उनसे फायदे उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे जिम्मे तो हुकूक की अदायगी है ना, हम तो इस तरह से नहीं हुकूक अदा कर सकते कि जंगल में जाकर के रहना शुरू हो जाए, हमें तो इंसानों के साथ ही रहना है। बहरहाल इसमें बड़ी हिकमतें हैं इस बात के अंदर, अगर हम समझना चाहें तो। ये इन्होंने इन्होंने जाकर के शेरों को ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि अच्छा शेर जो है ना ये तो सिक्योरिटी और सेफ्टी का इंतजाम करता है अपने फैमिली के लिए, जिसको के हर्ड ऑफ लायंस कहा जाता है। तो ये इनमें, यानी जंगली जानवरों में ना, लायन का जो हर्ड है या लायन की जो फैमिली होती है ना, ये बड़ी यानी मिसाली किस्म की फैमिली समझी जाती है। बड़ी इनके दरमियान जो है ना वो प्यार मोहब्बत होती है, लायन के जो बच्चे होते हैं वो आपस में बड़े प्यार से रहते हैं, और उनकी अम्मी जो है वो उनका बहुत बेहतरीन ख्याल रखती हैं, तो इसको बतौर मिसाल के पेश किया जाता है। तो अब ये जो फैमिली होती है लायन की, तो इसमें बेगम साहिबा और बच्चे जो हैं वो बड़े खुशी से रहते हैं, और जब भूख लगती है, भूख का जब वक्त आता है, जो कि बड़े देर के बाद आता है, हर वक्त रोजाना ये शिकार नहीं करते, बहुत कम खाता है लायन, ठीक है। तो वो हफ्ते में एक दफा जैसे शिकार करते हैं खाली, बाकी वक्त में जो है वो सो रहे होते हैं और आपस में खेल कूद रहे होते हैं। तो लायन साहब क्या कर रहे होते हैं, वो लायन जो है ना वो हिफाजत का इंतजाम कर रहा होता है। किससे हिफाजत, के कोई बाहर का लाइन है जो इस टेरिटरी का लाइन नहीं है बल्कि बाहर का, वो ना आ जाए इस टेरिटरी में, क्योंकि जब वो आएगा ना तो फिर उसने जो है ना वो बच्चों को मारना है, ठीक है, और उसने जो है ना पूरी टेरिटरीज पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करना है। तो ये जो मेल लाइन होता है ये यानी उस वक्त अपनी जान पे खेल करके लिटरली जो जो लड़ाई होती है मेल लायंस की, वो इंतहाई खौफनाक तरीन लड़ाई होती है जिसमें एक ही बचता है, दूसरा नहीं बचता फिर उसमें, ठीक है। तो वो फिर उसके लिए अल्लाह ताला ने उसको इस काम के लिए रखा है कि वो हिफाजत का इंतजाम करता है। उसने बाकायदा टेरिटरी अपनी जो है ना वो मार्क करी हुई होती है कि यहां से लेकर यहां तक जो है ये इस शेर का इलाका है, तो उस इलाके के अंदर कोई दूसरा शेर जो है वो आ नहीं सकता, अगर आएगा तो फिर उसको बाकायदा लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। तो बहरहाल तो अब इसकी उसको अल्लाह ताला ने क्या कॉम्पनसेशन क्या दी कि ज्यादातर जो है ना वो शिकार विकार के वक्त इसको तकलीफ नहीं देती शेरनी, शेरनी खुद ही शिकार कर रही होती है खुद ही, तो फिर जाहिर उसने पकाना तो होता नहीं है चूल्हे के ऊपर, बस शिकार कर लिया, अब जो है वो शेर खा लेगा, फिर उसके बाद ये भी खा लेगी, बच्चे भी खा लेंगे, और फिर उसके बाद बाकी जानवर आके खाते हैं, भेड़िए वगैरह वो सब जो हाइएनास वगैरह होते हैं वो खाते हैं, फिर उसके बाद गिद्ध खाते हैं, फिर उसके बाद चूंटियां खाती हैं, तो पूरा का पूरा एक फूड चेन अल्लाह ताला ने बनाई हुई है। तो बहरहाल तो उसने ये जब बात बताई ना तो ये बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ा। तो वो गाइड मुझसे पूछता है कि आप क्यों हंस रहे हैं, मैंने कहा कि ये आपके लिए अनोखी चीज है, हमारे लिए तो ये रूटीन की चीज है, यानी आप बाकायदा हमें ये बात बता रहे हैं ना गोया कि दिस इज समथिंग वेरी वर्थ टेलिंग, ठीक है, यानी ये बात जो है ना बड़ी वर्थ टेलिंग है, बताने के काबिल कोई चीज आपने समझी, तभी आपने बाकायदा अपने गेस्ट को ये बात बताई ना, तो हमारे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, तो ये रूटीन की बात है। कहने लगा वो कैसे, तो मैंने कहा कि हमारे घर में भी शेरियां खाना बनाती हैं और शेर पहले आकर खाना खाते हैं, यानी जो ट्रेडिशनल रिवायती घर होते हैं उसमें फिर जो है वो बेगम साहब खाना लगाती हैं और फिर वो बुलाती हैं कि जी आ जाइए खाने के लिए, खाना लग चुका है, तो फिर शौहर साहब जो है वो आते हैं और बैठ करके खाना खाते हैं, और फिर जाहिर है फिर ये नहीं होता कि यानी वो वाले घराने या तो मर्द औरत बिल्कुल मर्दाना अलग हो जहां पे मेहमान के साथ खा रहे हैं जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ठीक है, तो वो वाला मामला कुछ घरों में आज भी होगा जहां पे सिर्फ मर्दाने में अलग खाना खा रहे होते, फिर औरत जो होती है वो जनाने में खाना खा रही होती है, वरना जो फैमिली टाइम होता है उसमें तो फिर सारे सब बैठ करके एक साथ ही खाना खा रहे होते हैं ना, ये नहीं होता कि जी वो खाना खत्म कर लेंगे तब बेगम साहब खाना शुरू करेंगे, ठीक है, लेकिन वो भी कुछ जगहों पर मौजूद है कि पहले वो खत्म कर लेंगे फिर बेगम साहब खाना शुरू करेंगे। बहरहाल हजरत ने जो है वो एक रिवायती है ना वो सिचुएशन यहाँ पर रखी कि शेरिया शेरनियाँ माशाल्लाह वो भी शेरनी से कम नहीं होती, ठीक है, तो वो खाना बनाती हैं और शेर पहले आके खाना खाते हैं। इसके ऊपर मुझे आपको यानी ये बात सुनाने के दौरान ही एक और वाक्य याद आ गया कि हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये आजिज अपने फैमिली के साथ अमरीका में रहता था तो अजी ने एक दफा एक जिम्मेदारी लगाई कि हम जो है ना वो एक साइंस लैब बना रहे हैं महदुल फकीर, ठीक है, जो हजरत का मदरसा खाना है झंग शहर में, तो वहां पर हम ना एक साइंस लैब बनाना चाहते हैं, तो आप जो है ना वो अमेरिका में जहां आपको मौका मिले जहां आपको जगह नजर आए कोई ऐसा साइंस प्रोजेक्ट हो या कोई ऐसा साइंस मैगजीन हो तो वो आप हमें भेजा करें, या जब आप आते हैं तो खुद अपने साथ लेकर के आया करें। तो हमने जो है वो बाकायदा एक साइंस मैगजीन को सब्सक्राइब किया, तो वो मंथली जो उसकी आते थे तो फिर हम किसी के हाथ भेज देते थे जो भी पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा होता था या खुद जब जाते थे तो ले जाते थे, और फिर हर वक्त जो है ना हम देखते रहते थे कोई ऐसा साइंस प्रोजेक्ट मिल जाए जो कि हजरत की साइंस लैब के अंदर हम लेके जा सकें, ठीक है, हजरत खुश होंगे, दुआ देंगे, हमारा भला हो जाएगा, तो हर वक्त इसको फिक्र में रहते थे ना। एक दफा हम अपने घर वालों के साथ जो है वो शिकागो में एक नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम गालबन था वो, तो वहां पर गए ना घूमने के लिए, तो वहां नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में उन्होंने डायनासोर्स रखे हुए थे, उनकी बोन्स फॉसिल्स ये सारी बहुत सारी चीजें रखी हुई थी, तो एक जगह पर ना वहां पर एक उन्होंने इनक्यूबेटर रखा हुआ था, ग्लास इंक्यूबेटर, जो कि बेसिकली एक ग्लास का एक खाना होता है, डब्बा सा होता है, तो उसके अंदर जो है ना वो हीट होती है और अंडे पड़े हुए थे उसके अंदर, मुर्गी के अंडे। तो अब वो हीट की वजह से फिर मुर्गी के अंडे जो है वो फिर गोया के सेहरे होते थे, जैसे मुर्गी बैठ के सहती है, तो इंक्यूबेटर के अंदर मुर्गियां तो नहीं होती, वो अंडे होते हैं खाली। तो वो हीट की वजह से फिर इवेंचुअली 21 दिन का जो उनका टाइम होता है उसमें वो हैच हो जाते हैं। तो वो अंडे हैच हो रहे थे और बाकायदा उनके अंदर से चूजे निकल रहे थे ना, तो हमें बड़ी, हमने तो जिंदगी में ये कभी नहीं देखा था। हाँ, पाकिस्तान में हमारे नानू जो हैं वो अंडों पे मुर्गी को बिठाते थे, लेकिन बस उसके बाद एक दिन हमें चूजे नजर आना शुरू हो जाते थे। तो वो बचपन की यादें भी थी कि भाई चूजे वो निकल आए, तो बस उतना ही हमें पता था। तो हमने जब ये देखा ना कि बाकायदा अंडा हैच होते हुए चूजा अंदर से बाहर निकल रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा यार ये प्रोजेक्ट होना चाहिए साइंस लैब के अंदर। तो हम फिर कुछ अरसे के बाद जब हम वहां गए, तो वहां पे हजरत ने एक इंजीनियर भाई थे, उनको साइंस लैब का इंचार्ज बनाया हुआ है ना, तो हमने उनसे बात करी कि ये बड़ा अच्छा एक आइडिया आया है कि यहाँ पर जो है ना आप इस किस्म का एक इनक्यूबेटर बनाए जिसके अंदर से जो है ना वो अंडे हैच होते हुए जो लोग देखेंगे उनको बड़ा अच्छा लगेगा। तो उन्होंने बड़ा मजे का जवाब दिया, उन्होंने कहा कि यहाँ के लोग जो है ना वो उसको देख के कहेंगे कि यार ये कौन सी चीज है, ये तो हम रोजाना देखते हैं, ये कौन सी आपने नई बात कर ली। ठीक है, क्योंकि जंग शहर जो है, बहरहाल शहर तो है लेकिन वो एक गाँव नुमा शहर ही है, छोटा सा शहर है पाकिस्तान का, और हजरत का जो मदरसा है वो तो और भी शहर के बाहर है। तो उन्होंने कहा ये यहाँ के लोगों के लिए ना ये कोई नई बात नहीं है, आपको बड़ी अच्छी लग रही है, आप कराची के रहने वाले हैं, फिर आप अमरीका में चले गए, तो आपको ये बहुत चीजें बड़ी अनोखी लग रही है, हमारे लिए कोई अनोखी चीज नहीं है। तो बहरहाल ये वाकई अब याद आ गया। तो आगे फिर हजरत ने फरमाया कि बहरहाल ये फितरत का उसूल है कि अल्लाह ताला ने खाने के निजाम को औरत की जिम्मेदारी बनाया है, यानी घर के अंदर जो खाने का निजाम होता है उसको औरत की जिम्मेदारी बनाया, और घर के बाहर से खाने का इंतजाम करना, उसके लिए पैसे कमाना, उसके लिए ग्रोसरी खरीद करके लेकर के आना, या उसके लिए जो है वो जो भी मेहनत मशक्कत करना, तो ये सारा जो है वो मर्द की जिम्मेदारी लगाया, और औरत को करना फी बुयूतिकुन्ना का हुक्म दे करके फरमा दिया कि भैया आपने तो अपने घर का निजाम करना है, चलाना है। तो अब घर करना क्या है, तो खाना पकाना है बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन नहीं, बहुत कुछ करना होता है घर के अंदर, जो कि हम उमूर खाना के बयान के अंदर बहुत तफसील के साथ पढ़ चुके हैं, हत्ता के रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बयान के अंदर भी बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं। क्योंकि घर जो है वो सिर्फ मटेरियल चीजों का नाम नहीं होता कि जिसके अंदर आप मटेरियल मैनेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, कि ये शेल्फ कैसे लगाना है और आपको स्टोरेज कैसे मेंटेन करना है और आपको कपड़े कैसे धोने हैं, भाई सिर्फ जो है ये इन चीजों का तो नाम नहीं होता ना, घर तो इंसानों से बनता है ना, ठीक है। तो असल इंपॉर्टेंट चीज तो घर के अंदर इंसान है, और फिर उसके बाद उनकी काम की चीजें। तो रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिश्तेदारियां निभाना, ये तो पहला और सबसे ज्यादा अहम काम है जो कि घर में रहने वाली औरत को करना होता है, ठीक है। और ये एक फुल टाइम यानी बहुत अहम तरीन चीज है, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आप जमादात को नहीं मैनेज कर रहे होते, आप हैवानात को नहीं मैनेज कर रहे होते, बल्कि आप अशरफुल मखलूकात इंसान को जो है ना वो मैनेज कर रहे होते हैं, कि मैनेज से मुराद ये कि कैसे जो है वो अच्छी जिंदगी गुजारनी है उनके साथ, और कैसे उनके दरमियान जो है वो अच्छे मुआमलात रखने हैं, ठीक है। और ये आसान काम नहीं है, क्योंकि ये इंसान अल्लाह ताला की सबसे अफजल मखलूक है, ठीक है, सबसे अशरफ मखलूक है और सबसे कॉम्प्लेक्स मखलूक है, सबसे सोफिस्टिकेटेड मखलूक है इंसान, ठीक है। तो इंसानों के मैनेजमेंट क्या आसान होगा, नहीं, ये तो सबसे मुश्किल काम है। तो ये कौन करता है घर के अंदर रहते हुए, ये घर की औरत कर रही होती है। तो बाहर मर्द होता है ना, वो फिर अपने दफ्तर के अंदर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, या सियासत में होता है तो वहां पर और भी मुश्किल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, या जहां पर भी होता है वो वहां पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर रहा होता है, और वो गैरों के साथ कर रहा होता है जिनकी आपसे कोई ताल्लुक भी नहीं होता, जिनके आपके साथ कोई जो है वो रिलेशनशिप भी नहीं होती, उसको उनको मैनेज करना पड़ता है। और घर की औरत को अपने शौहर, अपनी औलाद या अपने सास ससुर, ठीक है, जिनके साथ एक या तो ब्लड रिलेशनशिप होती है या जो है वो ये ससुराली रिलेशनशिप होती है, ठीक है। तो रिलेशनशिप वालों को मैनेज करना होता है तो कौन सी चीज ज्यादा आसान है, बाहर वालों को, गैर लोगों को, दुश्मनों को मैनेज करना, ठीक है, या अपनों को मैनेज करना। अल्लाह ताला ने औरत के ऊपर बहुत मेहरबानी फरमाई है कि उसको जो है ना वो उस किस्म की मुसीबतों का जिम्मेदार नहीं बनाया है। इसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली औरत कामयाब हो जाती है, खुशी की जिंदगी गुजारती है, और इसके ऊपर हमेशा दूसरी तरफ देखने वाली कि नहीं मेरे पास वो क्यों नहीं है जो उनके पास है जो बाहर होते हैं, तो वो फिर हमेशा नाशुक्री की जिंदगी गुजार रही होती है और बेसब्री की जिंदगी गुजार रही होती है, और जिंदगी जहन्नुम में जाती है, ठीक है। कभी भी उसको चैन नहीं मिलता, कभी भी उसको इत्मीनान नहीं मिलता, क्योंकि शी इज ऑलवेज लुकिंग एट समवन एल्सेस सिचुएशन, शैतान उसको बता रहा, ये धोखा दे रहा होता है कि दूसरे की सिचुएशन जो है ना वो ज्यादा अच्छी है और तुम्हारी सिचुएशन जो है ना वो खराब है। तो इस तरीके से इंसान को नाशुक्र बनाना होता है। लेकिन अगर सही मानों में अकल समझ से देखे तो अल्लाह ताला ने उसके लिए बहुत आसानियां पैदा फरमाई हैं। उसकी वजह भी क्या, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने उसकी वसअत इतनी ही बनाई है, ठीक है, कि वो ये चीजें कर सकती है और यही चीजें कर सकती है। तो अल्लाह ताला ने फिर उसके ऊपर जिम्मेदारी भी उसकी वसअत के हिसाब से बनाई, ठीक है। तो बहरहाल ये कोई बुरी बात नहीं है कि औरत को जो है वो घर में रह करके ना खाना बनाना पड़ता है। तो शैतान फिर को, तुम तो खाली खाने बनाती हो, तुम तो और कुछ नहीं करती हो, तुम तो बच्चे पालती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है, तुम तो जाया हो रही हो, तुम तो, यही तो शैतान के ये वाले काम करता है ना, क्योंकि उसने इंसान को ना शुक्र बनाना होता है, तो वो ऐसे ही तो ना शुक्र बनाता है। नेमत छीन के को थोड़ी बना सकता है वो किसी को ना शुक्र, वो तो उसके बस में ही नहीं है नेमत छीन लेना। नेमत तो अल्लाह ताला छीनते हैं जब हम ना शुक्री करते हैं, शैतान की बात मानते हो तो नेमत तो अल्लाह ताला छीनते हैं ना जब हम उस नेमत की ना शुक्री करते हैं शैतान की बात मान करके। शैतान नहीं नेमत छीन सकता, शैतान तो सिर्फ धोखे देता है। बहरहाल तो इसलिए औरत को खिदमत के जरिए से जन्नत मिलेगी, ठीक है। ये जो खाना खाने का इंतजाम ये कर रही होती है, ये इसकी पार्ट ऑफ द खिदमत है। मर्द की पार्ट ऑफ द खिदमत क्या है कि वो खाने का इंतजाम कर रहा होता है और उसके लिए जो है वो रिस्क कमा रहा होता है, या उसके लिए फिर जान पे खेल रहा होता है, या दुश्मन के साथ जो है वो मुकाबला कर रहा होता है, वो उसकी पार्ट ऑफ द खिदमत है। और उसकी पार्ट ऑफ द खिदमत जो है वो ये है घर के अंदर। लेकिन ये फूड का टॉपिक औरतों के लिए जितना ज्यादा दिलचस्प है, मर्दों के लिए ये इतना ही गैर दिलचस्प होता है, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर खाना पकाने के बारे में तफसीलात जानने की फीलिंग्स ही नहीं होती, हिस्सियात ही नहीं होती, ठीक है। यानी ये अल्लाह ताला ने मिजाज मूमी तौर पर मर्दों का नहीं बनाया कि उनको जो है ना वो खाने के डिटेल्स में दिलचस्पी हो कि ये कैसे बनना है कैसे बनाना है, उनको खाने से दिलचस्पी है। ये कहते हैं ना कि हमें पेड़ गिनने से दिलचस्पी नहीं है, हमें तो आम खाने से दिलचस्पी है, ठीक है। अब हमें यार के कितने पेड़ थे और किस किस्म के पेड़ थे, बस आम लेकर के आओ, हमने उसको खाना है, ठीक है। वो माशाल्लाह हम सभी, औरत हो या मर्द, आम का मौसम आजकल चल रहा है तो हम खा रहे हैं ना, हम कौन सा पेड़ गिन रहे हैं कि वो। तो बस यही है कि इस चीज की दिलचस्पी उमूम तौर पर मर्दों में नहीं रख, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज भी उन्हीं मर्दों में आता है कि जिसको इस चीज की कोई नहीं है, ठीक है। कभी कभार पूछ लिया तो वो तो कभी कभार होते हैं ना, उससे जो है वो आप उसूल नहीं बना सकते, उसूल तो अक्सर के ऊपर बनता है ना, दलील अक्सर है हुक्मुल कुल, अक्सर के ऊपर। तो जो ज्यादा दिलचस्पी रखता है वो फिर उसूल बनेगा, और जो कभी कभार बात कर ली पूछ लिया उससे उसूल नहीं बनते। हमें याद है कि जब वही बात है ना कि खैर हमारी हमारे घर में तो सिर्फ दो भाई थे और शादी भी नहीं हुई थी, ना बड़े भाई की शादी हुई थी ना हमारी शादी हुई थी, तो हमारे घर में तो वो मसला पैदा ही नहीं हुआ था उस वक्त, जो कि जुम्मे के बयान में आज कह रहा था कि माँ को जो होती है ना वो बड़ी तकलीफ होती है इस बात पर कि भाई जो है वो भाभी से पर्दा क्यों कर रहा है, ठीक है, भाई भाभी से पर्दा क्यों कर रहा है। बड़ी तकलीफ होती है। तो लेकिन फिर जब भाई को अमेरिका में जॉब मिल जाती है तो आराम से वो हजारों मील दूर जाए वो अपने बेटे को भेज देती है, बस वो उसको घर टूटने का कोई परेशानी नहीं होती, पर्दे की वजह से घर टूटने की बड़ी परेशानी होती है उस सीमा को। खैर हमारे यहाँ अलहमदुल्ला ऐसा मसला नहीं था क्योंकि भाई की शादी नहीं हुई थी। बहरहाल जॉब मिल गई तो बड़ी खुशी खुशी जाए वो, अम्मा ने भेजा भी हाँ भी जाए जॉब करें वहां पे जाके, अच्छी आपको क्वालिटी ऑफ लिविंग मिलेगी वगैरह वगैरह। तो अम्मा ने फिर जो है ना वो हमारी अम्मी ने बाकायदा अपनी नोटबुक के पास कॉपियां होती थी तो एक कॉपी के ऊपर उन्होंने बहुत सारी रेसिपीज लिख के दी हाथ से अपने ना। तो मुझे याद है कि वो रेसिपी बुक जो है ना वो मैं लेके तो चला गया वहां पर, लेकिन मैं दो तीन रेसिपीज से कभी आगे बढ़ ही नहीं सका। जो सबसे आसान वाली थी ना आलू की भुजिया, और उसके बाद शायद वो मैंने आलू की भुजिया पे गुजारा किया, मुझे कोई परवाह नहीं थी मैं अच्छे अच्छे खाने बना के खाऊं, ठीक है। और एक दफा या दो दफा शायद जो है ना वो गोश्त का सालन बनाने की कोशिश करी होगी, वो भी मुसीबत बन गई ना, वो बन के नहीं दे रही थी। एक दफा जो है वो हमारे कजन वहां रहते थे, उनको बुला लिया घर पे कि जी आप आए खाना, हम आपके लिए खाना बनाएंगे। वो खाना बन के नहीं दे रहा था, बन के नहीं दे रहा था, घंटों गुजर गया हफ्ता कि वो भाभी आ गई किचन में। उस वक्त हमें कुछ पता ही नहीं था, जैसे पर्दा वर्दा भी कुछ नहीं पता था, तो वही आ गई, उन्होंने शायद उसको मुकम्मल किया ना खाना खाने को। तो ये होता है ना। लेकिन अब कुछ एक्सेप्शन होते हैं जो कि हमारे जानने वालों में भी ऐसे कुछ एक्सेप्शन कि या तो उनकी अम्माओं ने उनको किचन में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व किया, ठीक है, या वो खुद ही उनकी कोई एज एन एक्सेप्शन नेचर थी कि वो बहुत उनको घुसने का शौक था कुछ किचन के अंदर। तो अब उनने देखा कि जब बड़ी उम्र के हो गए ना तो अब उनको ऐसी आदत लग चुकी थी अपने हाथ से खाना बनाने की कि उन्होंने बस घुसना है किचन के अंदर ना, और या तो वो खुद बनाना है खाना या जो खाना बनाने वाली है ना उसको फिर ड्राइव करना है, यानी उसको बाकायदा यानी ऑर्डर करना है कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे क्या। और फिर भी जो वो बना लेगी ना खाना तो उनको कभी भी पसंद नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उनको सिर्फ अपने हाथ का खाना पसंद आएगा। तो ये मर्द जो होते हैं ना फिर अनफॉर्चुनेटली किसी की गलती की वजह से या अपनी ही किसी गलती की वजह से वो फिर मुसीबत बन जाते हैं। पहले अपनी बीवी के लिए मुसीबत बनते हैं, फिर अपनी बहू के लिए मुसीबत बनते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम काफी अरसे से ये बात क्लासेस में कहते आ रहे हैं कि भाई ये गलती मत किया करें, ठीक है, बेटे को ना इन्वॉल्व किया करें इतना ज्यादा। हाँ किचन में कोई हेल्प करने के लिए आप कर सकती हैं, उसको हम मना नहीं कर रहे, लेकिन पूरा फुल फ्लेज खाना बनाना ये ना किया करें। और अगर आप देखें कि उसके अंदर कोई इस किस्म के जरासीम हैं तो उसको डिस्करेज करें, ठीक है, उसको डिस्करेज करें, उसको इस तरफ ना वो पे दूसरे काम जो उसको करने के ना वो करेगा नहीं, और उल्टा जो है ना वो घर के खवातीन के लिए मुसीबत बनाएगा, ठीक है। तो हमारे के नहीं अभी मर्दों के अंदर ये वाली हिस्सियात बहुत शुरू में शादी के बाद एक दिन अहलिया किचन में काम कर रही थी तो हमें ख्याल आया कि हम भी जाएं और आटा गूंदने में और रोटी पकाने में उसकी मदद करें। तो सुन्नत भी है और हमें भी सुन्नत पे अमल करना चाहिए, जैसे नबी अलैहिस्सलाम इसी तरह से मदद कर दिया करते थे ना कभी कभी, ठीक है। तो अपने काम भी जा करके ये वाली इस वाली सुन्नत पे अमल करें। शौक तो बहुत है जी को हर हर सुन्नत पर अमल करने का, लेकिन सुन्नत का मतलब ये नहीं होता, सुन्नत का मतलब फर्ज नहीं होता ना, ठीक है, सुन्नत का मतलब सुन्नत होता है, और सुन्नत जो होती है ना वो फिर अहवाल के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। फर्ज जो है ना वो आपने हर सूरत में करना है, अगर आपके ऊपर वो चीज फर्ज है तो वो आपने करनी है, ठीक है। जैसे आखिरी क्लास में स्लीप मैनेजमेंट में बात हुई थी ना कि अगर आप एंटार्क्टिका में रहते हो या आर्कटिक में रहते हो या आप कनाडा में रहते हो, कितनी लेट जो है वो ईशा का टाइम हो और कितना अर्ली जो है वो फजर का टाइम हो जाए, आपने पढ़नी है, ईशा भी पढ़नी है, फजर भी पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि वो फर्ज है। हत्ता कि अगर 6 महीने का दिन 6 महीने की रात वाला वाला इलाके में भी अगर आप रहते हैं ना, ठीक है, जहां पे सूरज गुरूब ही नहीं होता, तो वहां पर भी आपने पांचों नमाजें पढ़नी है। यानी कि यहाँ तो सूरज गुरूब नहीं होता तो चलो जी यहाँ पे हम दो नमाजें पढ़ लेते हैं खाली, अब वो आप क्यों जाके रह रहे हैं, आपका मसला है आप क्यों जाके रह रहे हैं, लेकिन पढ़नी तो आपको है, ठीक है, क्योंकि वो फर्ज है ना, ठीक है, वो आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन सुन्नत में तो फिर दर्जे भी होते हैं और सुन्नत की ये आफाकियत वाला कॉन्सेप्ट जो है ना यहाँ नहीं चलता।
वो अलग कॉन्टेक्स्ट, हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है ना, कि सुन्नत आफाती है और बिदत जो है ना वो मुकामी है। वो भाई वो सुन्नत और बिदत के मुकाबले ये बात हो रही है कि बिदत मुकामी होती है और सुन्नत आफाकी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हर सिचुएशन के अंदर जो है ना वो जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने काम किया था वैसे ही हर बंदा काम कर सकता है। ठीक है, तो हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है, ये ऐसे नहीं समझ जाते चीजों को। तो बहरहाल तो हजरत जी ने सुन्नत पे अमल करने की नियत करी, गए लेकिन कर नहीं सके अमल। हैं पीर जुल्फिकार अहमद, एक एक सुन्नत को जो है वो अमल करने वाले, वो इस सुन्नत पे अमल कर ही नहीं सके। कैसे वो हम आप सुनिए, आप पढ़ चुके होंगे आगे आप खुद ही। तो फरमाया कि हाँ, जब किचन के दरवाजे पे पहुंचे तो अहलिया साहिबा ने देखा कि ये किचन में क्यों आ रहे हैं। वो जल्दी से आई, दरवाजे पर मुझे रोक लिया कि आप यहां अंदर क्यों आ रहे हैं। मैंने कहा आपकी मदद करने के लिए आ रहा हूं। तो उसने कहा कि ये खाना पकाना मेरा डिपार्टमेंट है, मैं पकाऊंगी और आपको दस्तरखान पर पका पकाया खाना मिलेगा, आप जाएं। तो हमें तो उसने दाखिल ही नहीं होने दिया। फिर उसके बाद हम इस लाइनस टेन, ठीक है, मजाक में हजरत ने फरमाया किचन को लाइनस टेन यानी शेरनी का कछार, उसके अंदर हम कभी दाखिल नहीं। हाय हाय हाय, जुल्फिकार अहमद ने सुन्नत छोड़ दी। वो भाई सुन्नत के बारे में बता दिया कि ऐसा नहीं होता वहां है ना, फराइज नहीं होता सुन्नत। सुन्नत से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अब जो है ना वो किसी लड़ाई करना शुरू कर दें। ठीक है, बीवी से लड़ा है कि नहीं, नहीं मुझे तो आना है, सुन्नत पूरी करनी है, तुम्हारा बात मैं नहीं मानूंगा। ठीक है, ये तमाशे नहीं होते। ठीक है, अच्छा ये सब ये बात हम सुन्नत के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, फर्ज और वाजिब ये एक अलग कैटेगरी होती है। फर्ज और वाजिब में ऐसे नहीं होता कि नहीं बीवी ने मना कर दिया तो वाजिब छोड़ दिया। ठीक है, जैसे दाढ़ी, दाढ़ी वाजिब है। आपका ये अनम्यूट हुआ है, इसको म्यूट करना है अगर प्लीज, सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो बीवी ने कहा कि जी दाढ़ी नहीं रखें। भाई दाढ़ी वाजिब है, तो उसने कहा नहीं, चलो बीवी ने को अच्छा नहीं लगा मेरी दाढ़ी रखना, तो चलो जी मैं दाढ़ी को शेव कर लेता हूँ। नहीं, ठीक। अच्छा, खानों के बारे में मजीद चंद मुफीद टिप्स। अच्छा, ये जो है फिर हम पढ़ना तो हम अगली क्लास में शुरू करते हैं, लेकिन इसकी इसकी एक तमहीदी बात थी, वो हम कर फिर हम शुरू करेंगे, और अल्लाह करे इसमें ज्यादा तफसील में हम ना ही जाएं। ठीक है, पढ़ करके खत्म कर लें और आप लोग उसको फिर देखें कि भाई क्या चीज इसमें एप्लीकेबल है, क्या चीज एप्लीकेबल नहीं है। राजू जी ने फरमाया था तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन इसकी तमहीदी बात जो है ना वो बस इतनी है कि ये जो हजरत यहाँ पर टिप्स बता रहे हैं ना, ये हजरत के ऊपर इल्हाम नहीं हुई है। ठीक है, वही तो वैसे भी नबियों के ऊपर होती है, खाली औलिया के ऊपर इल्हाम होता है ना, कश्फ और इल्हाम। ठीक है, तो हजरत के ऊपर ये इल्हाम नहीं हुआ है कि प्याज को ऐसे काटना चाहिए और टमाटर को ऐसे रखना चाहिए और धनिया को जो है वो ऐसे फ्रीज करना चाहिए, नहीं, बल्कि हजरत ने जो है वो ये टिप्स मोस्ट लाइकली इंटरनेट से ली। ठीक है, या किसी किताब से ले ली होंगी। ठीक है, तो अब इसमें जो है ना ये कोई वो नहीं, इल्हामी बातें नहीं है। तो इनमें अगर कोई चीज गलत हो, आपको पता चले कि नहीं अब ये ऐसे नहीं होता बल्कि किसी और तरीके से होता है, तो उसके ऊपर ना तो जिद करने की जरूरत है कि नहीं नहीं हजरत ने फरमाया था तो मैं ऐसे ही करूंगी, नहीं। ठीक है, कोई जिद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इल्हामी बातें नहीं है, और ना जो है वो हजरत के बारे में बदगुमान होने की जरूरत है कि हजरत ने तो गलत बता दिया था, किसी को पता चला कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता है, वो हजरत ने बताया था तो हजरत ने तो गलत बता दिया। अल्लाह की बंदी, वो हजरत का ये फील्ड नहीं है वैसे भी। ठीक है, हजरत का ये एरिया नहीं है, तो हजरत ने बस देख करके बात आगे बढ़ाने के लिए आपको कुछ चंद टिप्स बता दी। ठीक है, तो ना तो इसके ऊपर जिद पकड़ने की जरूरत है, मैं तो वही करूंगी जो हजरत ने कहा है। ठीक है, और ना जो है ना वो दूसरी एक्सट्रीम पे जाने की जरूरत है कि हजरत ने गलत बता दिया, ये क्या कर दिया हजरत। ठीक है, ये हो गई थोड़ी सी तमहीरी बात। क्लास का वैसे भी ऑफिशियली तो खत्म हो गया, अगरचे आज हमने लेट शुरू किया था, लेकिन ये बिल्कुल एक डिफरेंट सी बातें हैं। तो इंशाल्लाह इनको फिर अगली ही क्लास के अंदर हम पढ़ लेंगे। किसी को कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो।
तो आप बता सकते हो। ठीक है, जो बात करी शुरू से लेकर अब तक वो तो इंशाल्लाह क्लियर हो गए हो, जब भी कोई सवाल नहीं। क्लास खत्म करते हैं, वो आखिर दावा है ना, अनिल हमदुल्ला।